نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي پیغام قرآن پارہ نمبر 24 سورة زمر کی آیت نمبر 32 سے یہ پارہ شروع ہوتا اور سورة زمر جو کہ ہم پچھلے پارے میں شروع کر چکے اس میں ادھورے جملے سوالیہ انداز اور سوچ ابھارنے والا انداز ہے کس طرح سے ان صورتوں میں اللہ تعالیٰ زیادہ بات جو ہو رہی ہے وہ شرک اور توحید کے فرق پہ ہو رہی ہے کہ اتنا قرآن پڑھنے کے بعد حقیقت میں انسان کا دل گواہی دیتا ہے کہ شرک کی اس دنیا میں کوئی گنجائش نہیں ہے اس کے باوجود بھی دیکھیے آج دنیا میں ایک بڑی تعداد لوگوں کی مشرک ہے اور خاص طور پہ اس دفعہ تو قرآن پڑھتے ہوئے ایسے لگ رہا ہے کہ سب سے پہلے شرک کو ختم کریں کیونکہ جب تک ترتیب نہیں سیٹ کریں گے بات نہیں بنیں گے اور سورۃ زمر میں ہم نے مضامین کو دیکھتے ہوئے ان آیات پہ جہاں پہ ابھی ہم ہیں دیکھا تھا کہ اس کا ٹاپک جو ہے وہ اچھا اور برا کردار ہے یعنی کچھ اچھی چیزیں اور کچھ بری چیزیں پھر اسی کے ساتھ آپ دیکھیے کہ آیت 38 سے 52 میں مشرکین کے باطل نظریات کا رد آ رہا ہے آیت 53 سے 63 میں اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹنے کی بات ہے اور 38 سے 52 باطل کے ساتھ سمجھوتے بازی کی نفی ہے کہ سمجھوتا ہو نہیں سکتا کیونکہ یہ دو قومی نظریہ ہے حق حق ہے باطل باطل ہے آیت 38 سے 52 احوال قیامت ہیں کہ جب قیامت آئے گی تو کیسے لوگ مختلف گروہوں میں بٹیں گے آئیے اب آیتوں کے ساتھ ساتھ چلتے 32 سے 35 دو کردار اور دو انجام اور دیکھیں شروع میں ہی آپ کو تقابل دکھنے لگے گا نا فمن اسلم ممن کذب علی اللہ پہلا شخص کون ہے کذب علی اللہ نعوذ باللہ اگر اللہ کے نبی نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا تو ٹھیک ہے پھر ان سے زیادہ کوئی بڑا ظلم نہیں کر رہا لیکن یہ تو نہیں الحمدللہ تو وکذب بالصدق جاءہ پھر وہ ہے سب سے بڑا ظالم جس کے پاس سچ آ جائے حقیقت آ جائے اور پھر وہ اس کو جھٹلا دے علیہ صفی جہنم مسو للکافرین تو ہمیں اپنی زندگی میں ہمیشہ اس چیز پہ نظر رکھنی چاہیے کہ کہیں میں سچ کو حق کو جھٹلاتی تو نہیں کبھی کبھی انسان پورے اسلام کو جھٹلا دیتا ہے جب اس کو کوئی دعوت دے اور وہ نہ مانے اور کبھی کبھی اسلام پہ آنے کے بعد بھی اسلام کے بہت سارے احکامات کو جھٹلا دیتا ہے اللہ تعالیٰ دونوں سے ہی بچا کے رکھے آیت 36 سے 37 کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے علیہ صلی اللہ بھی کاف نبدہ تو جواب دیجئے کہ جی حسبی اللہ لا الہ الا ہوا مجھے تو اللہ ہی کافی ہے اور کہیے حسبن اللہ و نعم الوکیل دو انبیاء کا بولا ہوا یہ جملہ ایک ابراہیم علیہ السلام جب آگ میں ڈالے گئے اور ایک صحابہ اور اللہ کے نبی جب ان کو حمر الاسد کے طرف سے یعنی ایک دشمن کے مقابلے کی بات سنائی گئی ایک جھوٹی خبر سب کی گئی تو حقیقت ہے کہ بندے کو اللہ ہی کافی ہوتا ہے اور یہ لفظ بندہ بھی دیکھیے گا بھی کافن عبدہ ہو کیونکہ جب بندگی کے رنگ میں بندہ ڈھلتا ہے نا اس کے بعد صرف اللہ پہ نظریں رہتی ہیں ساری زندگی لوگوں کے پیچھے لوگ پھرتے ہیں آخر میں پھر اللہ ہی کام آتا ہے کلمہ پڑھتے ہوئے دنیا سے چلا جائے تو بچ جائے گا ورنہ انجام جو بھی بنے گا اس وقت سب ارد گرد کی چیزیں انسان کا ساتھ چھوڑ دیتی ہیں آیت 38 سے 40 خود ساختہ معبود بے اختیار اور لاچار ہے مین میڈ چیزیں کبھی مین کے کام آئیں گی کتنی حیرت کی بات ہے نا آپ دیکھیں جس چیز کو آپ خود بنائیں یا سوچیں اگر وہ کوئی واقعی ظاہری چیز ہے تو اس کو آپ نے خود بنایا اور اگر کسی کے ساتھ ایسی کوئی سوچ لے کر آپ بیٹھتے ہیں کہ فلاں میرے کام آئے گا تو وہ بھی تو بندہ خود نہیں بنا نا اللہ نے بنایا تو پھر وہی بات لکھی ہے کہ شرک کی تو اس دنیا میں کوئی گنجائش ہی نہیں ہے 41 دائی کی ذمہ داری حق پہنچانا ہے منانا نہیں کیونکہ جب آپ منوانے کی کوششیں کرتے ہیں تو پھر حق بدلنا پڑتا ہے ظاہری بات ہے آپ دیکھیں نا کہ جب کوئی ایکسیپٹ نہیں کر رہا تو پھر آپ کوشش کریں گے ایکسیپٹ کریں یہ بالکل ایسے ہی ایک مثال دینا چاہتی ہوں ایک ہے کھانا بیچنے والا جو بہت نیوٹریس فوڈ بیچتا ہے گھر میں مائیں بیویاں بہنیں اچھا کھانا بناتی ہیں ایک ہے وہ جس نے کھانا بیچنا ہے جس کو ٹیسٹ چاہیے جس کو سمیل چاہیے دونوں کا فرق کیا آپ کو معلوم ہی ہوگا कि माँ तो हमेशा घर में वो खाना बनाएगी जिससे बच्चे को ताकत मिले, एनर्जी मिले, चाहे वो बहुत फैंसी खाना ना भी हो, लेकिन बेचने वाला हमेशा फैंसी खाना बनाएगा, तभी तो लोग खरीदेंगे ना। अब ये आपको कसीदे पढ़ेंगे, देखिए इससे आपके जिस्म को इतना फ़ायदा, विटामिन डी मिलेंगे, इसमें होल मीट है, ये है वो, आप कहेंगे मैंने खाना खाना है, मुझे कोई दवाई थोड़ी चाहिए। बिल्कुल इसी तरह से जब आप लोगों को हक मनवाने की नीयत लेके घर से जाते हैं ना, तो आप फिर खाने का और दीन का टेस्ट बदल देते हैं, फिर लोगों की मर्ज़ी के फतवे, उनकी पसंद की बातें, फिर आपकी पॉपुलैरिटी का ग्राफ बहुत बढ़ जाता है। और अगर आप हक परस्त हैं ना, तो आप कहेंगे लो भाई ये है हक, कुल जाल हक का, बस खाते हो खाओ, मानते हो मानो, नहीं लेते ना ले तो मेरा काम हो गया। जैसे देखिए डाकिया है ना, उसको तो पे मिलती है कि जाकर इस लेटर को ड्रॉप करो, अब खोलने के बाद उसमें गम की खबर, खुशी की खबर, जॉब चली गई या पे चेक आ गया, उसको इससे क्या लगे। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है, इसलिए इस पे बात करें। आप में से भी जो लोग दाई दीन हैं, बाज़ाब्ता तौर पे या बेज़ाब्ता तौर पे, हमेशा हक का बात अच्छी करें, इंटेंसिटी ना बढ़ाएं, एग्जेजरेट ना करें, लेकिन मनवाने का दावा करके घर से ना निकलिए। आयत 42, ज़िंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है। अल्लाह यतवफ्फल अन्फुसहीना मौतिहा वल्लती लम तमुत फी मनामिहा। हर रोज़ एक नींद से उठते हैं, इसी तरह कल मौत के बाद भी उठेंगे, दोबारा जी उठने का सबूत है इसमें। आयत 43 से 44, शिफात अल्लाह ही के अख्तियार में है। अमित तखजू मिन दूनिल्लाहि शुफा। और आप देख रहे हैं, सवाल है, क्वेश्चन, क्या तुमने बनाए हैं अल्लाह के सिवा कुछ सिफारशी। जब क्वेश्चनिंग होती है ना, तो आधी बात तो अगले को वहीं समझ आ जाती है कि मैंने कोई गड़बड़ कर दी है। जैसे माँ बच्चे से कहती है क्या सोचा है आपने, तो एकदम वो सोचेगा कि मैंने कुछ गड़बड़ की है। आयत 45 46, आमाल की जवाबदेही से बचने के लिए शिर्क का सहारा। क्या चाहते हैं लोग, करें हम और भरे कोई और जब आगे जाएं तो वहां जाके बता दें जी हाँ वो फलां था, वो फलां था, उसकी वजह से ये वो हुआ। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, वलौ अन्न लिल्लज़ीन ज़लमू मा फिल अर्दि जमीअन व मिस्लहू माहू लफ्तदौ बिही मिन अज़ाबिल अज़ मिन सूइल अज़ाबि यौमल क़ियामा। तो गलत सोचे रख कर सही भी काम किए जाए तो सही नहीं होंगे। और स्पेशली आप देखिए कि इससे पीछे की आयात में जब उन्होंने अपने बड़ों के लिए कुछ कहा, तो अल्लाह ने कहा कि ठीक है, फिर मैं ही क़यामत के दिन फैसले करूँगा कौन सही और कौन गलत। आयत नंबर 47 से 48, रोज़े क़यामत कोई फ़दिया सज़ा से बचा न सकेगा, बल्कि क्या होगा। वलवन्नलिल्लज़ीन ज़लमू मा फ़िल अर्दि जमीअन व मिस्लहू माहू लफ्तदौ बिही मिन सूइल अज़ाबि यौमल क़ियामा व बदा लहुम मिन अल्लाहि मा लम यकूनु यहतसिबून। वो कुछ उस दिन खुल जाएगा जिसके बारे में इंसान सोच भी नहीं सकते थे। व बदा लहुम सय्यात मा कसबू। ऐसे लगता है क़यामत के दिन हर चीज़ खुल खुल के सामने आ रही। वहा कभी मा कानु बिही यस्तहज़ियून। आयत 49 से 52, अल्लाह ताला का एहसान और इंसान की नाशुक्री जो हर दौर में इंसान ने की। क़ाल इन्नमा ऊतीतुहु अला इल्मिन। इसका जुमला था कारून का, कहने लगा मुझे तो अपने इल्म पे मिला है, मत आई डिज़र्व फॉर दिस। इवन अपने इल्म को भी अपने ही कहता है, हालांकि अल्लाह अगर अकल को पीछे से रोक दे तो फिर देखें कितना को इल्म आता है आपको। सब नेमतें अल्लाह के साथ जुड़ी हुई हैं। अगर इल्म है आपसे, अल्लाह कोई दीन का काम ले रहा है कोई बोल के लिख के, तो मुझे कभी ना कहिए कि कहिए तो मेरे इल्म के साथ है, मैं हूँ ही बड़े इल्म वाला। खाक इल्म वाले हैं आप, आपको ये बात ही नहीं पता कि अल्लाह के हाथ में सब कुछ। तो अपने सारे इल्म को और सारी खैर की बातों को अल्लाह पे जोड़ दीजिए कि वो है मुझसे कुछ करा लेता है, बस उसी के हाथ में। बल ही या फितनतुन, ये तो आजमाइश है। वलाकिन अक्सर हम ला यालमून, लेकिन अक्सर नहीं जानते। आयत 47 48, रोज़े क़यामत कोई फ़दिया सज़ा से बचा नहीं सकेगा, और ये बात सच है। और उसके बाद आयत नंबर 49 से 52, अल्लाह का एहसान और उसकी नाशुक्री। अल्लाह ताला दिन रात बंदों पे एहसान करता है और बंदे दिन रात ही उसकी नाशुक्री करते हैं, और ऐसे नाशुक्रों को फिर अल्लाह ताला पकड़ लेता है, उसको पता है कि मैंने कैसे पकड़ना है लोगों को। वला कि नक्सरहुम ला यालमुन। आयत 53 कुरान हकीम की सबसे ज़्यादा उम्मीद दिलाने वाली आयत। ला तकनतु मिन रहमतिल्लाह, बड़े से बड़ा गुनाहगार, इवन मुशरिक, इवन मुनकिर, इवन एथियस्ट, कबायर का सरजद किया गया, यानी जैसे कबायर भी हो गए, आज अगर आकर अल्लाह के सामने शर्मिंदगी से सर रख दे तो कुल या इबादी अल्लज़ी नसरफ़ु अला अन्फुसिहिम ला तकनतु मिन रहमतिल्लाह। आयत 54 से 55, अजाब आने से पहले सच्ची तौबा कर लो। वनीबू इला रब्बिकुम वस्लिमू लहू मिन क़ब्ल यातियकुमुल अज़ाब सुम्मा ला तुनसरून वत्तबिउ अहसना मा उन्ज़िला इलैकुम मिन रब्बिकुम। कैसे अल्लाह तआला बिल्कुल ऐसे लगता है कि मौत के दरवाजे पे खड़ा करके एक इंसान को ये बातें बता रहे हैं, और आज हम जिंदा हैं और ये बातें सुन पड़ रहे हैं, इससे पहले कि वक्त हमारे ऊपर भी आ जाए। उस वक्त अगर हम शर्मिंदगी का एहसास भी रखेंगे ना, कबूल नहीं होगा। इसकी मिसाल फिरौन है कि फिरौन सारी ज़िंदगी डिलेट करता रहा, डिली डली करता रहा, और मौत के फरिश्ते को देख के बोल गए इन्नी तुबतुलान। तो तौबा एक टाइम बाउंड चेक है, कैश ना कराया जाए तो ज़ाया हो जाता है। आयत नंबर 60 से 61, रोज़े क़्यामत, अच्छा और बुरा अंजाम, दो किरदार हैं जिस पे सूरत का नाम भी है। जो कर रहे हो देख लो, अपने आप को तुमने अल्लाह ताला की मर्ज़ी का बनाना है या अल्लाह से मुख्तलिफ ही जीना है। सूरत तो है ज़ुमर, और यहाँ क्या बात है देखिएगा। वह यौमल क़ियामती तरल्लसीन कज़बू अला रब्बिहिम वुजूहुहुम मुस्वद्दा, झुटलाने वालों के चेहरों को उसे नल्ला स्याह कर देगा, यानी जिसको आप कहते हैं ना रू स्याही, और एक होता है सुर्ख रुई। मुराद क्या है? मुहावरतन, चेहरे सफ़ेद या काले नहीं होते, रिग्रेट की वजह से स्याह लगते हैं, और दूसरी तरफ काम करने के बाद जो बदले मिलेंगे उसकी खुशी से चमक रहे होते हैं, वो चमकते हुए चेहरे हैं। आयत नंबर 62 से 63, अल्लाह ताला पर भरोसा हर मुश्किल से निकाल देता है, क्योंकि बंदा कहता है कि अल्लाहु खालिकु कुल्ली शयइन व हुवा अला कुल्ली शयइन वकील, और लहू मकालीदु समावाती वल अर्ज। और आयत 64 से 66, बातिल के साथ समझौते की ज़ोरदार नफ़ी, बल्कि सख्त अंदाज़ है इसमें। अगर आप देख रहे हैं ना साथ साथ, तो आप देखेंगे कि कैसे लोग अल्लाह को झुठला कर दुनिया से जाते हैं। कुल अफ़गैर अल्लाह ही तामुरूनी आबुदु अय्युहल जाहिलून, कहीं अंदाज नहीं है। ओ जाहिलो, तुम ये कहते हो, मुझे ये हुक्म देते हो या ये मशवरे देते हो कि मैं अल्लाह के माँ सिवा को पूजूं, उसके साथ अपने ताल्लुक़ को जोड़ूं। यानी तौहीद वाले को तो गुस्सा लग जाता है ना जब कोई उसको शिर्क की दावत दे या शिर्क मुशरिकाना कल्चर की तरफ ले जाए। ये तो हम हैं जो बड़े मज़े से ऐसी चीज़ों को इंजॉय कर करा के आ जाते हैं। फिर आए 67 से 70, क़्यामत का मंज़र। वनुफ़िखा फिस्सूर फसाई का मन फिस समावाती व मन फिल अर्थ। और इससे आगे आयत 71 72, कुफार की जहन्नम की तरफ रवानगी। ये है वसीक अल्लज़ीना, यहाँ सूरत का नाम आ रहा है, सी का दो दफ़ा आएगा बल्कि ज़ुमरा का लफ्ज़। और ज़ुमर कहते हैं ग्रुप को, ट्रूप को, मिले वे लाइक माइंडेड पीपल लिव टुगेदर। जैसी मर्जी, जैसी सरगर्मियाँ, जैसी चॉइस दुनिया में होगी, क़्यामत के दिन ऐसा ही हशर होगा। तो 73 से 74 में फिर मुत्तकीन की जन्नत की तरफ आमद है। पहला गिरोह अल्लाह को नाराज़ करने वाला था, और दूसरा वसीक अल्लज़ीन तक़व रब्बहुम इलल जन्नति ज़ुमरा। ये भी सब मिलकर आएंगे। दुआ कीजिए हम सब इस ग्रुप में हों। ये गिरोह, इसके लिए तमन्ना और इसके लिए ख्वाहिश और कोशिश करनी है। आयत 75, फरिश्तों के दरमियान इख्तलाफात का फ़ैसला। फरिश्तों के इख्तलाफ वो नहीं है जो आप सोचे हैं, जो इंसानी इख्तलाफात हैं, बल्कि आखिरी आयत है सूरत की, वतरल मलाइकता हाफीन मिन हौलिल अर्श। और आप देखते हैं फरिश्तों को जो घेरा किए होते हैं अर्श के गिर्द, और वो तस्बीह करते हैं अपने रब की हम्द के साथ। वकुदिया बई नहुम बिलहक। ये है इख्तलाफात का फैसला। सब मामले एंड पे पहुंच गए, सारी फाइलें क्लोज, सारे मामले ख़त्म, बस अब नो मोर मुकदमा। आप देखिए जैसे कोई वकील होता है ना तो डिफरेंट मुकदमे लेता है। दुनिया में भी हमारे सारी ज़िंदगी किसी से झगड़े, किसी से मसले मामले चलते रहते हैं। खुद ही अब नहुम बिल हक। सब इंसानों के मामले ख़त्म और फरिश्ते तो बीच में एक सिंबल हैं, उनका तो किसी से कोई लेना देना नहीं है। वकील अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तकरीबन 4 दफ़ा कुरान पाक में अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन का लफ्ज़ है। पहला तो आपको भी याद है सूरत फातिहा में, एक यहाँ का भी नोट कर लें। तो ये थी सूरत ज़ुमर। अब देखते हैं चंद आयतें जिसमें हमारे लिए बड़ी खूबसूरत हिदायत है। आयत 36, क्या अल्लाह काफ़ी नहीं, ये है सोल सर्चिंग क्वेश्चन और हर बंदे को अपने आप से पूछने के काबिल बात। अलैहिस्सल्लाहु भी काफ़ी नबदा, मैं इसके जवाब में एक ही कहती हूँ, जब अल्लाह तुम्हें काफ़ी नहीं तो कोई भी काफ़ी नहीं। बस फिर सोच लो, तुम्हारी नहीं पूरी बढ़नी, तुम्हें नहीं मिलने बच्चे, तुम्हें सेहत नहीं मिलनी, तुम्हें माल नहीं मिलना, तुम्हें सुकून नहीं मिलना, तो सिर्फ अल्लाह पे नज़रें लगाइए। सच्ची खालिस तौहीद का तकाजा तो यही है। आयत 53-55, रहमत के मुस्तहक कैसे बने, तो इसका जवाब इधर लिखा हुआ है, तौबा करके, अल्लाह की तरफ रुजू करके, मुस्लिम होकर। قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ, इसकी तफसीर सुनिए, मारूफ आयत है, आपको इसके बारे में बहुत कुछ आता होगा, लेकिन यहाँ बस इतना समझ लीजिए, तौबा में देर न कीजिए, अपनी गलत आदतों को छोड़िए। लोग बड़ा प्यार मोहब्बत इनको सीने से लगा के रखते हैं, तो गुनाह सीने से लगा के रखने वाली चीज़ नहीं है, बल्कि इनको अपने से जितनी जल्दी दूर कर सकें करने। फिर आयत 53-55, रहमत के मुस्तहक कहाँ कैसे बने, उसी की कंटिन्यूशन में एक और काम, वत्तबी वाहसनमा उन्जिला इलैकुम, और पैरवी करो इस बेहतरीन किताब की जो तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से तुम पर नाजिल की गई, से पहले कि तुम पर अजाब आ जाए और तुम्हें खबर भी ना हो। यानी गुनाहों में डूबे हुए लोगों के सामने ये किताब आती है और यही है जो तौबा करने पे माइल करती है। तो कहा बस, जो रिग्रेट फील हो रहा है, जो शर्मिंदगी हो रही है पिछली ज़िंदगी में, वो सब छोड़ो और अब इसको पकड़ लो, अब इसको नहीं कभी छोड़ना। कोई ना कोई कुरान का कोर्स ज्वाइन करो, इसको थामो, इसको बस जब्ता पकड़ो, इधर उधर से सुना सुनाया इल्म इल्म नहीं होता।